समय संसार पर राज्य करता है और किसी के लिए रुकता नहीं, सभी उसके प्रभाव में हैं। हम सभी को समय के नियम का पालन करना ही है, इसकी मुट्ठी से छूट पाना कतई संभव नहीं। आज शुभ दिन है क्योंकि समय हमसे बातें करना चाहता है। हम भाग्यशाली हैं जिनसे समय कुछ कहना चाहता है, तो आइए सुने आखिर क्या कहना चाहता है वो।
रचना की है, अन्वेषण किया है और अन परिणाम का विभाजन करते बहुत दूर जा चुके हैं। आपने चांद पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। आपने विज्ञान के आधार से जीवन को ही जीवन का चमत्कार दिखाया है। मूलमंडल की हर एक वस्तु अपनी सत्व प्रधान स्थिति से तम प्रधान स्थिति में और तम प्रधान स्थिति से सत्व प्रधान स्थिति में परिवर्तित होती ही है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है।
सृष्टि रंगमंच का यह सबसे समृद्ध समय था। बहुत काल से हर एक मानव के अंतर मन में, हर एक संस्कृति में, हर एक देश में इस सतोप्रधान समय की स्वर्णिम युग की स्मृति समाई हुई है। पुराणों से, मौखिक कहानियों से, महान धर्म ग्रंथ से, विद्वानों के अध्ययन से और पंडितों के परामर्श से यह विदित होता है कि शांति, सुख, संपत्ति से समृद्ध एक काल है। इसी को ही स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ मनुष्य सर्व गुणों से संपन्न देवी देवता थे। शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे। धन धान्य से भी पूर्व सुंदरा मानव को सर्व प्राप्तियां कराती थी। क्या यह एक स्वप्न मात्र है या काल के गर्भ में छिपा हुआ एक सत्य? हर एक आत्मा में स्वर्ग का ज्ञान अदृश्य रूप में है। स्वर्णिम युग का समय, सद्भावना का वह समय, कालांतर में चाहे गुम हो गया हो लेकिन हमारे मानस पटल से नहीं गया है। बहिष्ट जन्नत पैराडाइज आदि नामों से जाने जाने वाला वह समय मानव इतिहास का अकल्पनीय समय था।
चक्र का यह समय भी सतयुग की तरह ही सुख शांति एवं समृद्धि से भरपूर था। इस काल को रजत युग या चंद्र काल भी कहा जाता था। मनुष्य आत्मा चंद्रमा की तरह सर्व देवी कलाओं से सुसज्जित एवं शीतल थी। सतयुग की तरह ही आपसी स्नेह सहयोग सद्भावना से जीवन यापन करती हुई हर मनुष्य आत्मा सभी प्रकार से संपन्न एवं संतुष्ट थी। श्री रामचंद्र की तरह मनुष्य आत्माएं क्षत्रिय धर्म का पालन करती थी। प्रकृति अब भी मानव की दासी थी और उसके हर आदेश का पालन करती थी। अब भी चांद तारे फिर पांचों तत्व नियमों में बंध कर विचरण करते थे। मानव जीवन मर्यादाओं का पालन करते हुए आनंद का पान कर रहा था। सुख शांति पवित्रता की त्रिवेणी हर मन में बहती थी। भाई भाई में असीम प्यार था। संसार विश्व बंधुत्व की डोर में बंधा हुआ एक परिवार था। भूमंडल पर मानव सभ्यता का विस्तार हो रहा था। फिर भी मानव का आचरण शालीन व उत्तम था।
सृष्टि रंगमंच से स्वर्ण वरदक युग विदाई हो चुके थे। समय काल चक्र की आठ परिक्रमा पूरी कर चुका था। अज्ञान की घोर रात्रि अपना साम्राज्य फैलाने लगी थी। जीवन मूल्य विलुप्त हो रहे थे और विकार सर्वव्यापी बन रहे थे। मानव स्वयं के सत्य स्वरूप को भूलकर भ्रमित मान्यताओं में उलझा हुआ था। ईश्वर के सत्य स्वरूप से मानव अनजान था और वह ईश्वर को पाने के लिए भटक रहा था। सत्य ज्ञान के अभाव ने श्रद्धा अंधविश्वास में बदल गई थी। तब विश्व क्षितिज पर धर्म पिताए ज्ञान सितारों और धर्म नक्षत्रों के रूप में उभरने लगे। सर्वप्रथम इब्राहिम आए और उन्होंने खुदा का पैगाम सुनाया। खुद की रूहानी ताकत से उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी। समय आगे बढ़ता गया। दुनिया में लड़ाइयां खेली जाने लगी। हिंसा से मानव सभ्यता खतरे के साई में जीने लगी। ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ने संसार को शांति का संदेश दिया एवं अपने आत्मिक बल से बौद्ध धर्म की स्थापना की। समय की धारा और आगे बढ़ी। चारों ओर छल कपट और बोलबाला होने लगा। यीशु ख्रीस्त मानवता का मसीहा बनकर संसार पटल पर उपस्थित हुए। उन्होंने मानव को प्रेम का पाठ पढ़ाया एवं अपनी आत्मशक्ति से ईसाई धर्म प्रस्थापित किया। सोने की सुइया और आगे बढ़ी। स्वार्थ के नाम पर देश बटने लगे और विश्व के टुकड़े टुकड़े होने लगे। विश्व पर आतंक का काला साया मंडराने लगा।
सुरक्षित नहीं है, आपका परिवार भी नहीं। दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां फैल रही है और लाखों लोग मरते जा रहे हैं। दुनिया विज्ञान की पराकाष्ठा की जगह झोंक से भ्रमित है। प्रकृति थक गई है और लोग अपनों के बीच में होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। अब आपका यह जीवन केवल आपके देह का हाव भाव बस शरीर ही रह गया है। एक समूह के लोग दूसरे से द्वेष करते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं। सभी देश आपस में युद्ध करने की होड़ में है और करोड़ों देखो एक ही क्षण में नाश करने वाले शस्त्र धार है। एक समय ऐसा था जब आपका हर चीजों पर नियंत्रण था, लेकिन आज आपके मन पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। आपका मन निरंतर दबाव में है और अपनी शक्ति खो बैठा है। आप तीव्र प्रतिस्पर्धा में है और जो समर्थ है उसी की जीत होती है। आप ईर्ष्या, भय, विश्वासघात इत्यादि दुर्गुणों से घिरे हुए हैं। यह संसार जो फूलों का बगीचा था अब कांटों का जंगल बन गया है। जो स्वर्ग था अब नरक बन गया है। संसार अपना एक कालचक्र पूर्ण करके अब लोहे का युग बन गया है। दीप बुझ गया है और अंधेरा छा गया है।
चक्र का यह वह अमूल्य समय है जब आत्मा अपने और अपने घर के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। कर्मों के अंत और सत्यों के आदि का यह परमात्मा के अवतरण का समय है। आइए हम अपने मन पर जमी मिट्टी को साफ कर अपने आंतरिक जगत का संशोधन करें। हर एक मानव के हृदय में उभरने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर आध्यात्मिक ज्ञान ही दे सकता है। मैं कौन? मुझे संतुष्टता क्यों नहीं है? जीवन क्या है? परमात्मा कौन? अब पूछा जाता है कि आप कौन, तो अपने शरीर का नाम बताया जाता है। कई व्यवसायी से अपना परिचय देते हैं और कल अपनी जाति, देश इत्यादि का परिचय देते हैं। हमारा पुरातन सत्य ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम आत्मा हैं। भ्रगुदी के बीच में चमकता हुआ चोटी अगोचर शक्ति आत्मा द्वारा धारण किया हुआ शरीर हम नहीं हैं, लेकिन शरीर को धारण किए हुए हम आत्मा हैं। शरीर जब पुराना होता है तो आत्मा उसे छोड़ नया शरीर लेती है। हम आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है और शरीर नाश होता है।
अवतरित होकर अपना परिचय स्वयं देते हैं। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। मुझे शिव भगवान यहोवा अल्लाह या गॉड कहकर पुकारते हैं। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघरों का निर्माण किया, यात्राएं की, यज्ञ जप तप आदि किया और मुझे ढूंढा, परंतु मैं इन चंचुओं से दिखाई नहीं देता। मैं दिव्य ज्योति स्वरूप चमकता हुआ सितारा हूं। इस स्थूल लोक से परे परमधाम में मेरा निवास स्थान है। तुम मेरे साथ इस अखंड शांतिमय लोक में निवास करते थे। मेरी ही तरह तुम भी सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप हो, अविनाशी। तुम शरीर धारण कर इस सृष्टि और मंच पर अभिनय करने आते हो। इस सृष्टि नाटक की समाप्ति के पश्चात तुम भी मेरे साथ परमधाम चलोगे। जन्म मरण के चक्र में आने से तुम अपने आप को और मुझे भूल गए हो। सृष्टि नाटक में एक बार मैं अवतरित होकर तुम्हें अज्ञान और मोह के बंधन से मुक्ति देता हूं। मैं सदा मुक्त हूं, सदा पवित्र, सदा आनंदपूर्ण, सदा प्रेमपूर्ण। मैं सर्वगुणों का सागर हूं, मैं सर्वशक्तिवान हूं और विश्व कल्याणकारी हूं। तुम भी मेरे जैसे हो और मेरे हो। तुम मुझे पहचान कर अपने मन बुद्धि को मुझ पर एकाग्र करो तो मेरे पास आ जाओगे। एक प्राचीन ज्ञान जिसमें परिवर्तन लाने की शक्ति है, वही आशा की प्रबल किरण है। यह कोई रहस्य नहीं है, ना ही अगोचर है। जो प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए ये मार्ग खुला है। ये ज्ञान मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का शुभारंभ होता है।
अब राजयोग द्वारा परमात्मा के साथ आत्मिक संबंधों की अनुभूति करें। आप स्थिर होकर बैठें, गहरा श्वास लें। अब अपनी बुद्धि को बाहर से हटाकर अपने अंदर की ओर खिंचाएं। मन को प्रकृति के बीच में केंद्रित करें। मुझ आत्मा का यह निवास स्थान है। इसी स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, हाथों द्वारा कर्म करती हूँ, पांवों द्वारा चलती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ और कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। अब मैं इस भौतिक जगत से पार अपने घर शांति धाम की ओर जा रही हूँ। यहाँ पर अनेक आत्माएं सितारों के रूप में जगमगा रही है। मैं एक विशेष सितारे की ओर आकर्षित हो रही हूँ। वही मेरे परम प्रिय परम पिता परमात्मा है। मेरे चारों ओर परमात्मा का परम प्रकाश फैला हुआ है। परमात्मा के सानिध्य में मैं गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। इस शांति में मुझे परमात्मा के प्रेम का अनुभव हो रहा है। जिस प्यार की मुझे चाह थी वह अब मैं पा रही हूँ। मैं स्वयं को बेहद शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा सभी बोझों से मुक्त अपने को हल्का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ।
Never stops for anyone. More. are under its influence. We all have to follow the dictates of time. It's not possible to get away from its grip. Today is an auspicious day because time wants to speak to us. We are fortunate. Let us listen to what time wants to convey to us. Researchers, created wonders, brought out many inventions. You've moved very far. You've moved very far away after dividing the smallest particle of the atom, and also have established ownership rights over the moon. Scientific and technological progress has surpassed nature's miracles. Understand, each and every object on Earth passes from its golden aged stage to its iron aged stage. This is a law of nature. This was the most prosperous time of the world. From time immemorial, in the heart of hearts of every human being, every culture and every country, there is the cherished memory of the golden aged period embedded in the mind and intellect. Everyone believes that there existed a time when peace, happiness and prosperity prevailed. The period was called heaven. Here existed the deities who were full of all virtues. The lion and the cow both drank water from the same bank of the stream. Was it only a dream? Or is it the truth hidden in the world cycle? All souls partially have the knowledge of heaven. The time of golden age, the time of harmony may have disappeared, but it is not completely vanished from the minds of people. This age is called by different names. Heaven, Bahisht, Jannat, Paradise, Satyug, etc. And was beyond our imagination.
Was also full of peace, happiness, and prosperity, just as in Satyug. This period was also known as Ratchet Yug, where there was the rule of the Moon Dynasty. Every human soul was adorned with divine qualities, just like the full moon. Just as in Setyug, human souls were completely content in every way. People had love for each other and lived with cooperation and in harmony. Just like the king of that time, Sri Ramchandra, the people also followed the path of the warrior religion. Even nature was subservient to human beings and followed the king's directions. People lived life by following the disciplines, a trilemma of peace, happiness, and purity flowed in everyone's mind. Unlimited love for one another existed in the people. The world was one family. Changes were taking place in nature, but the human beings on Earth remained elevated.
Golden Age and Silver Age started departing from the world stage. By the time 50% of the total period of the Copper Age had passed, the night of darkness and ignorance started spreading its reign. The value of life was diminishing, and vices became omnipresent. Human beings forgot their original form. Human beings were ignorant about the real identity of God and were in search of God. In the absence of true knowledge, beliefs were turning into blind beliefs. On the world firmament, divine fathers were trying to come up as stars of knowledge and religion. First of all, divine father Abraham appeared, and he became an instrument to give a godly message. By his own spiritual power, he laid the foundation for the religion of Islam. Time progressed further. Wars continued to be fought in the world. Human civilization was under the shadow of danger due to violence. At such a juncture, Mahatma Buddha gave the world the message of peace, and on the strength of his spiritual power, established Buddhism. The stream of time progressed. There was fraud, falsehood, and deception all around. Jesus Christ appeared on the scene of humanity as a liberator. He taught human beings the lesson of love and established Christianity. The needle of time moved further. In the name of religion, countries were divided and disintegrated into pieces. There was the black shadow of terrorism in the world. This is the end of the world cycle. No one feels secure, not even in their own family. New diseases are coming to the fore, and lakhs of people are dying as a result. The world is dazzled by the brilliance of science. Nature has become tired, and people among their own kith and kin feel isolated. Your own life is nothing but the movement of various limbs of your body. People of one group hate and criticize the people of other groups. All the countries are on the warpath among each other, and there are weapons manufactured for killing millions in a fraction of a second. There was a time when there was a human control over everything, but now people don't have control over their own minds. Their mind was under constant pressure and had lost its own power. There was a cutthroat competition, and those who were powerful, they are successful. People had jealousy, hatred and ill will, surrounded by evils like treachery and deception. The world, which was like a garden of flowers, has now become a forest of thorns. The one that was heaven has now turned into hell. The world had completed its one cycle and had become iron aged. The lamp had extinguished, giving birth to darkness.
This is the most valuable time of the world cycle, when a soul learns about itself and its home. This is the time of the confluence between the golden-aged world and the iron-aged world. This is the time of the reincarnation of God. Come, let us clean the dust which has accumulated over our minds and cleanse our inner world until it is as it should be. It is only spiritual knowledge which can answer all the questions that arise in the minds of human beings. Who am I? Why am I not happy? Why am I not contented? What is life? Who is God? Now, when we ask people who they are, people tell us the name of their body. Some introduce themselves on the basis of their profession, and there are some who give the introduction of their community and their country. Our true and ancient knowledge teaches us that we are all souls, seated in the center of the forehead. Shining, self-luminous power. We are not the bodies made of five elements, but our souls embodied in this corporeal form. The soul is imperishable. It is the body which perishes.
Introduces himself by reincarnating in an ordinary human body. I am the embodiment of bliss. I am Shiva. I am Shiva. I am the embodiment of knowledge. I am Shiva. I am Shiva. I am the embodiment of light. I am Shiva. I am Shiva. I am Shiva, Jehovah, Allah, and God. You have constructed for me temples, mosques, and churches. You have performed pilgrimages, penances, and intense devotions to search for me. But I am invisible to these gross material eyes. I am a divine, shining star. I dwell in Paramdham, far away from this gross material world. You yourself be in the eternal world of silence. Like me, you are a subtle, imperishable divine form of light. You incarnate in a gross material body on this world stage to play your part. You will return to Paramdham along with me at the end of this world drama. While playing your part, you have forgotten yourself and me, your father. By reincarnating on the world stage once, I liberate you from the bonds of attachments and ignorance. I am forever liberated, forever pure, forever blissful and loveful. I am the ocean of all virtues. I am the world almighty authority and the world benefactor. You are mine, and are like me. By recognizing me as I am, and by concentrating your mind and intellect on me, you will reach me. My reincarnation is divine, singular, and incognito. And I am the father of you souls, the children, who have been separated from me for a very long time. Your relationship with me is true and eternal.
Let us experience through Raj Yoga the spiritual relationship between ourselves and the Supreme Soul. Sit. Be still. Take a deep breath. Remove your intellect from the external world and concentrate on the middle of your forehead. This is the very place where you dwell. In this state, I see through my eyes, hear through my ears, speak through my mouth, act through my hands, and carry myself from place to place through my feet. I am a soul, the master, and I perform actions through my bodily organs. I am the embodiment of light. Separate from my body. I am a point of light, a star, separate from this gross material world. My world is a world of golden red light. That is my home. I am flying there. I pass many planets, and I am pulled towards one special planet. This is the Supreme Soul, God, my dearest Father. Around me, a godly light is spreading. The ocean of peace is above me, spreading waves of silence. I am pulled into even deeper silence. In this silence, I experience the love of my Father. The love I wanted most, I am receiving now. I am, once again, full of powers. I am free from all burdens. I am now returning back to this world. Gradually, I alight and enter my material body. I am spreading God's love, peace, and power in this world. I am the peace, the light, and the love.